ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಮೋಹತೀರಾ ವನಚಾರಿ ವನಚಾರಿ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ Thank you. प्रवरो धरया भार्यया सह धरया भार्यया सह करिष्यमाणा देशान् करिष्यमाणा देशान् करिष्यमाणा देशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः ब्रह्मणस्तमुवाचः श्रीसुक उवाच द्रोणवसूनां प्रवरो द्रोणवसूनां प्रवरो धरया भार्यया सह धरया भार्यया सह धरया भार्यया सह करिष्यमाणादेशान् करिष्यमाणादेशान् ब्राह्मणस्तमुवाचः ब्राह्मणस्तमुवाचः
ब्रह्मणस्तमुवाचः
श्रीशुक उवाच सुनाम प्रवरो धरया भार्यया सह दृश्यमानादेशाम् ब्रह्मणस्तु उवाच उवाच वसुनां प्रवरो श्री सुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा द्रोण द्रोण नामक वसुदाम अष्ट वसुओं में प्रवर सर्वश्रेष्ठ धरया धरा धरा के आर्यया अपनी पत्नी सह साथ परिश्यमान संपन्न करने के लिए आदेशात आदेश ब्रह्मण ब्रह्मा का तम उससे उवाच कहा भूतकाल में। अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइंट रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में कहा गया है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता निज रूपतया कलाभि गोलोक निवसत्य किलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जब कृष्ण कहीं भी अवतार लेते हैं तो अपने पार्षदों समेत आते हैं। वे पार्षद सामान्य जीव नहीं होते। कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं और जब वे अवतरित होते हैं तो अपने पार्षदों समेत आते हैं। इसलिए नंद तथा माता यशोदा कृष्ण के नित्य पिता तथा माता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कभी कृष्ण अवतरित होते हैं तो नंद तथा यशोदा के साथ साथ वसुदेव तथा देवकी भी भगवान के माता पिता के रूप में अवतरित होते हैं। ये व्यक्ति भगवान कृष्ण के नित्य शरीर से के अंश होते हैं, के सामान्य जीव नहीं होते। महाराज परीक्षित इसे जानते थे किंतु वे सुखदेव गोस्वामी से जानने के लिए इच्छुक थे कि क्या सामान्य व्यक्ति साधना सिद्धि के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। सिद्धि दो प्रकार के होती हैं, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध वह है जो कृष्ण का नित्य पार्षद है, कृष्ण के शरीर का अंश है। जब साधना सिद्ध सामान्य मनुष्य होते हैं जो वे पुण्य कर्म करके तथा भक्ति के नियमों का पालन करके इसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस तरह महाराज परीक्षित के पूछने का उद्देश्य यह था कि क्या सामान्य व्यक्ति माता यशोदा तथा नंद महाराज के पद को प्राप्त कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रश्न का उत्तर निम्नवत दिया। ओम ज्ञात विनंदस्य ज्ञानांजन शलाकय शिक्षरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं संसकीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहगणरिता शिविशाखान्वितांश्च नमो मिष्टपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्ते सारसदेवे गौरवाणे प्रचारिणे विशेषपाश्चातदेशधारिणे श्रीकृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगिराधे वृंदावनेश्वर विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उच्चारण किया गया है। श्री सुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक उच्चारण किया परीक्षित महाराज का एक प्रश्न के ऊपर आधारित होके। परीक्षित महाराज पिछले दो श्लोकों में उन्होंने एक आश्चर्य यानी आश्चर्य को अनुभव करते हुए उन्होंने एक संदेह या व्यक्त किया, अपना आश्चर्य को व्यक्त किया। प्रश्न नहीं बोला जा सकता, एक प्रकार का आश्चर्य है। तो यह आश्चर्य परीक्षित महाराज को क्यों हुआ कि भगवान ने यशोदा को अपने पूरा मुख में ब्रह्मांड को दर्शन कराया, कराने के बाद यशोदा का जो व्यवहार देख के भगवान के साथ परीक्षित महाराज आश्चर्य हो गए। तो आश्चर्य क्या था? आश्चर्य ये था कि नंदः किम् अक्रोधम्मन् सेह एवं महोद्यान् यशोदा च महाभाग पापो यशया स्तनम् हरिः। तो उनका प्रश्न ये था कि मैं जानना चाहता हूँ कि यशोदा मई का इतना परम सौभाग्य है। क्या परम सौभाग्य है? जो जिनको वेदों में यज्ञ पुरुष कहा गया है, सांख्य योग अन्य उपनिषदों में ब्रह्म परमात्मा करके संबोधित किया गया है, अनेकों शास्त्रों में जिनका वर्णन हुआ है, वो अभी यशोदा मई का स्तनपान कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा सौभाग्य यशोदा मई को प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, जो देवकी और वसुदेव जो कृष्ण के जन्म देने वाले हैं यानी कृष्ण के माता पिता हैं, उनको भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य यशोदा मई को प्राप्त हुआ। आश्चर्य की बात यह है, अगर कोई बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो माता पिता के रूप में माता पिता को आनंद देता है। वसुदेव और देवकी को भगवान ने आनंद प्रदान नहीं किया। वैसे देवकी का भी स्तनपान किया था, लेकिन जो बाल लीला, इस प्रकार की बाल लीलाओं को भगवान ने देवकी और वसुदेव को दर्शन नहीं दिया। जो यशोदा का परम सौभाग्य सुन के परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित हो गए। तो परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित होके तुमने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था कि इतना महान स्थिति यशोदा मैंने कैसे प्राप्त किया? ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया यशोदा मैंने जिसके द्वारा उनको ये स्थिति प्राप्त हुआ? ये जो पुण्य कार्य जो है, ये इतना महान कार्य, ये साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है। कोई महान व्यक्ति ही इस प्रकार का पुण्य कार्य किया होगा, पिछले जन्म में यशोदा मैंने किया होगा, इसलिए जो वसुदेव को भी प्राप्त नहीं हुआ, वैसा महान स्थिति यशोदा मैंने को प्राप्त हुआ। जो देवकी को प्राप्त नहीं हुआ, इतना हद तक कि जो नंद महाराज को भी प्राप्त नहीं हुआ वो यशोदामय को प्राप्त हुआ, इनका ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न के हिसाब से पिछले श्लोक में हमने सुना नंद महाराज ने सोचा हाउ एवर एंजॉय दिस पास टाइम फुल्ली एंड देयरफॉर देयर पोजीशन इज ऑलवेज बेटर देन दैट ऑफ देवकी एंड वसुदेव। और जैसे ये प्रश्न उन्होंने पूछा, परीक्षित महाराज ने पूछा, सुखदेव गोस्वामी के मन में आया क्या प्रश्न पूछ रहा है ये, कोई पूछ रहा है लाइक प्रश्न है क्या। उनको एक तरीके से क्रोध नहीं बोल सकते हैं, एक तरीके से जिगुप्सा तरीके से बात हुई, लेकिन कोई पूछना एक प्रश्न है। तो एक तरीके से उनका मुंह जो है, उनका पूरा चेहरा सुखदेव गोस्वामी का खिन्न हो गया, हे परीक्षित तुम ऐसा क्यों प्रश्न पूछ रहे हो। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब भगवान की जो रासलीलाओं को वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज ने वर्णन किया, सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया परीक्षित महाराज को, इस प्रकार गोपियां जो है भगवान की जो बांसुरी का आवाज सुन के तुरंत प्रेमोन्मत वो भाग के कृष्ण से मिलने गई। तब गोपियां साधारण स्त्रियां हैं कहां के ब्रज के, तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में ये श्लोक आता है, यहाँ परीक्षित महाराज 12वें श्लोक में ये प्रश्न पूछते हैं। ने कहा कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमां तासां गुणधियां कथम। तो परीक्षित महाराज को इन्होंने प्रश्न आया कि शास्त्र में कहा गया है जो भगवान को जानता है वही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता है, शास्त्रों में अनेकों अनेकों जगह कहा गया है, वेदों में कहा गया है, हे मे विदित्वा मृत्युमेति भगवत को जानने तद विज्ञानार्थम सब एवा विगच्छेत। भगवत ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन इधर परीक्षित महाराज के प्रश्न है कृष्णम विदु परम कांतम, कोई गोपियां कृष्ण को किस रूप में जानती थी, कृष्णम विदु परम कांतम एक महान एक ऐसे प्रेमी रूप में जानते हैं बस, न तो ब्रह्मतया मुने, ये कृष्ण को परब्रह्म के रूप में नहीं जानते हैं लोग ये गोपियां, न तो ब्रह्मतया मुने कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परम तासां गुणधियां कथम। उनका प्रश्न ये था कि ये जो गोपियां, ऐसे तो भावुकता जो है गुणों के अंतर्गत आता है, गुणधियां ये जिनकी जो बुद्धि है गुण प्रवाहो परमां तासां गुणधियां खत्म, इनके जो भौतिक आसक्तियां भी एक स्त्री के रूप में एक बच्चे के माँ के रूप में अनेकों अनेकों कार्य कर रहे थे, वैसे लोग एकदम बिल्कुल भगवान के वैसे कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल उनका एक ही था कृष्ण से कुछ प्रेम था काम था, मिधु परम कांत कृष्ण को कांत के रूप में या प्रेय प्रेमी के रूप में देखते थे बस। और इन लोगों को ऐसा स्थिति कैसे प्राप्त हुआ, जैसे परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी को बहुत क्रोध आया। वो क्रोध में परीक्षित महाराज की प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उक्तम पुरस्कार ये तथ्य, परीक्षित जानते हैं हो पहले भी कह चुका हूं चैत्य सिद्धिम यथागता विषन्न ऋषिकेशम किमुता दोक्षजा प्रिया। तो बहुत सुंदर तरीके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उक्तम पुरस्ताद, उक्तम पुरस्ताद का अर्थ क्या है, मैं पहले तुमको कह चुका हूं कि चैत्य सिद्धिम यथागता, शिशुपाल शिशुपाल ने सिद्धि प्राप्त कर चुका है, सातवें स्तर में पूरा वर्णन है किस प्रकार शिशुपाल सिद्धि प्राप्त किया, भगवान को द्वेष करते उनको निंदा करते करते शिशुपाल मुक्ति प्राप्त किया, जब भगवान को द्वेष करके कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो इधर सुखदेव गोस्वामी कहा विषन्न ऋषिकेशम, ऋषिकेश के प्रति द्वेष होने पर भी चैत्य सिद्धि में स्वागता, चैत्य राजा जो शिशुपाल ने सिद्धि प्राप्त किया तो किम कहा अधोक्षजा प्रिया, जो अधोक्ष के प्रति भगवान के प्रति इतना प्रेम की भावना है क्या वो लोग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। क्रोध में उन्होंने ये श्लोक को उच्चारण किया सुखदेव गोस्वामी ने, असल में परीक्षित महाराज भले ही उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तो कृष्ण को जानते नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान के बिना कृष्ण को कैसे प्राप्त किए, मुक्ति को कैसे प्राप्त किए, तो ये भले ही उन्होंने परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, परीक्षित महाराज को मालूम था उस सभा में कौन थे, अनेकों अनेकों प्रकार के लोग थे। जब ये रासलीला का शुरुआत का जो भाग है, किस प्रकार गोपियां अपने गर्भ संसार को त्याग करके सब कुछ कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर भाग के कृष्ण मिलने के लिए रात को ये जैसे सुना, तो परीक्षित महाराज ने देखा कि अनेकों अनेकों लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा था कि ये क्या बोल रहे सुखदेव गोस्वामी। तो उनकी मन में जो शंका को निवारण करने के लिए परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा। भले ही उनके लिए प्रश्न पूछा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के ऊपर थोड़ा बहरे के रूप में क्रोधित हो गए। अभी इधर भी वही प्रसंग है, उसी प्रकार का एक प्रसंग है। इधर परीक्षित महाराज जैसे कृष्ण लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से, और यशोदामय का वात्सल्य का रस का आस्वादन कर रहे हैं, तुरंत उन्हें पूछा यशोदा ने कौन सा पुण्य कार्य किया ये स्थिति प्राप्त करने के लिए। यानी परीक्षित महाराज विचार कर रहे थे चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, आर्थो जिज्ञास रसार्थी ज्ञानी च वरदर्शवा, ये यशोदा में कौन सी प्रकार की है, या यशोदा ने कौन सा साधना किया, कौन सा भक्ति का कार्य किया जिसके द्वारा वो यशोदा का ये स्थान प्राप्त हुआ पिछले जन्म में, कौन सा भक्ति का कार्य किया। अभी उस प्रश्न सुनके परीक्षित महाराज का ये प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी में एक प्रकार की खिन्न भावना आई। इतना रसमय लीला को वर्णन हो रहा है कि क्या प्रश्न पूछ दिया, लेकिन फिर भी दो भावनाओं को दो बातों को लेके उनकी प्रश्न का जो ठीक ठाक जवाब, भक्ति को पुष्ट करने वाला जवाब उनकी देते हुए, और साथ साथ में ये जो यशोदा का जो महिमा है उसका सिद्ध करने के हिसाब से सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रश्न का जवाब इस श्लोक में दिया। देखिए अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है उसका प्रश्न का भी जवाब बराबर होना चाहिए, और साथ साथ में वो जो रस है उसका भी कभी कम नहीं होना चाहिए। ये दो भावनाओं को मन में रखते हुए सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रश्न का जवाब दिया। देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का यह प्रश्न के पीछे क्या उद्देश्य है। सबसे पहला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इतिहास को वर्णन करना शुरू किया, अभी कहां यशोदा कहां द्रोण और दारा, लेकिन फिर भी उनको कहना पड़ा द्रोण और दारा के विषय में। तुमने कहा द्रोणो वसुराम भवरहा, वसुओं के बारे में बात करना, अभी नंद महाराज यशोदा दूध पान स्तन पान की बात हो रहा है, व्रज की बात हो रहा है, तुरंत ये प्रश्न पूछते ही सुखदेव गोस्वामी किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आ गए, वसु लोग के वसु लोग आ गए हैं। तो फिर भी प्रश्न पूछा गया, इसको बताना पड़ेगा। तो इसने कहा कि द्रोणो वसुनाम प्रवाह, इतिहास की अनेक साल पहले की बात है, एक पति पत्नी थे द्रोण और दारा, ये कोई और नहीं थे वसु थे, तो ये अष्ट वसु असु वसु कोई और नहीं है, वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र द्रोण है। तो ब्रह्मा जी जो भी पुत्र होते तुरंत उनको आज्ञा देते, क्या आज्ञा देते, ब्रह्मा जी का कार्य एक ही आज्ञा है, जाओ प्रजा का सृष्टि करो, प्रजापति बनो, और आप ब्रह्मांड को भरो, लोगों से भरो, प्रजापति बनो। ब्रह्मा जी के जो पहले पुत्र थे कौन, चार कुमार मानस पुत्र थे, जैसे पृथ्वी प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने कहा आदेश दिया आप प्रजापति बनो, ये संसार को मैंने बनाया है, अभी सब खाली खाली है, अभी प्रजाओं को सृष्टि करो आप, यानी आप एक प्रकार का गृहस्थ कार्य में लगो। और जैसे ब्रह्मा जी ने चार कुमारों को कहा, चार कुमार कहने लगे नहीं ये कार्य हम नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है, हमको शांति से भजन करना है। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, और क्रोध तो बाहर व्यक्त भी नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था ये जो बोल रहे अच्छी बात बोल रहे और दूसरी बात था तो मेरी बात तो हमारा नहीं, इतना हिम्मत तुम लोगों का, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारे पिता हूं। अभी उसी प्रकार द्रोण और दारा को भी उनने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था आप प्रजापति बनो, लेकिन द्रोण और दारा ने निवेदन किया। श्रीपाल वल्लभाचार्य ये जो आखिरी शब्द है हा, इस शब्द का व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अगले श्लोक में ये द्रोण और दारा की जो निवेदन, ब्रह्मा जी की आज्ञा, जैसे ब्रह्मा ने आज्ञा दिया आप जाओ प्रजा की सृष्टि करो, तो ये आज्ञा देने थे जब दिए थे द्रोण और दारा ने कुछ प्रार्थना किए थे, अगले श्लोकों में उसका वर्णन है। वो प्रार्थना सुन के ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। क्या प्रार्थना तो हम भाव्य सुनेंगे। सार रूप में द्रोण और दारा ने भगवान ब्रह्मा जी से भक्ति का आशीर्वाद मांगा था, हमको भगवान के प्रति भक्ति चाहिए। उसका वर्णन तो अगले के श्लोक में कल परसों होगा, लेकिन बात यह है कि ये बात को देख के आश्चर्यचकित हो गए थे ब्रह्मा जी भी कि हाँ शब्द के द्वारा आशीर्वाद। वल्लभाचार्य कहते हैं क्योंकि भले ही ये बात इतिहास में हुआ है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे द्रोण और धारा की ये भक्ति की भावना को देख के। तो उनका पुण्य कार्य यही था द्रोण और धारा की, कि उनके अंदर प्रजापति का पोजीशन मिल रहा है, इतना बड़ा पोस्ट मिल रहा है। ब्रह्मा जी ने सीधा आदेश दिया आप प्रजापति बनो, आपके पास इतना सामर्थ्य शक्ति है। सब कुछ होने के बाद भी द्रोण और धारा को कुछ भी किसी का भी पड़ा नहीं था। उन्होंने क्या किया, खाली हमको भगवान की भक्ति चाहिए, ये बात ब्रह्मा जी से उन्होंने मांगा। तो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है द्रोणम वसुनाम प्रवरः धरया भार्या सह करिष्यमान आदेशम ब्रह्मणस्तम उवाचा। करिष्यमान आदेशम, तो ब्रह्मा का आदेश क्या था, आप सृष्टि करो। उन्होंने सुना ठीक है, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि करो तो जाना चाहिए, नहीं किया उन्होंने। द्रोणाचार्य ने क्या किया, नहीं आपका आदेश तो ठीक है लेकिन हमको आप ऐसा आदेश जिसके द्वारा हम केवल भजन कर सके और कुछ ना करें। तो इसलिए करिष्यमाण आदेशम ब्रह्मणस्तम उवाचः, ब्रह्मा जी से इस प्रकार वो बोलने लगे। अभी प्रसंग ये है कि आप पूरा परपोर्ट या इसका पूरा तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम सीखने वाले हैं, तो ये बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करने का सिद्धांत है। बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी इन श्लोक के द्वारा, ये प्रसंग के द्वारा, एक तो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है उसका पूरा निराकरण करना है, दूसरा बात क्या है यशोदा मई का जो कृष्ण के साथ जो लीलाएं हैं उनका जो रस है आस्वादन है उसमें भी जरा सा भी कमी नहीं होने देना है। ये दोनों को पुष्ट करने के लिए परीक्षित महाराज का प्रश्न को भी जवाब देना है, या तत्व विचार भी करना है, या तत्व का ज्ञान भी प्रदान करना है, और साथ साथ में जो रस ज्ञान जो है उसको भी पुष्ट करना है। ये दोनों को सिद्ध करने के लिए ये श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं। ये श्लोक को क्यों उच्चारण किया, क्या जरूरत था, या किस प्रकार ये दो चीजों को सिद्ध किया, एक है तत्व ज्ञान दूसरे और रस तत्व, इसको भी कैसे पुष्ट किया। बात यह है द्रोण और दारा कौन थे, द्रोण और दारा साधारण जीव थे। तो इसके द्वारा हमको पता लगता है कि अनेकों अनेकों प्रकार के जीव होते हैं। कुछ जैसे जीव है जो भगवान के पार्षद माने जाते हैं जिनको नित्य सिद्ध कहा जाता है, और कुछ जीव है जिनको नित्य मुक्त भी कहा जाता है, और कुछ जीव है जिनको साधना सिद्ध या बद्ध मुक्त कहा जाता है। तो ये जीवों की प्राकृति कैसे हुआ, इन जीवों की कैटेगरी क्या है, ये बात को थोड़ा सा उनको जानना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमारा जीव का प्राकृति जो है शक्ति से होता है, से शक्ति विविधैव श्रूयते। केवल जीव ही नहीं पूरा जगत भी शक्ति का ही प्राकृति है। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब चीज को प्रकाशित करते हैं। उपनिषदों में एक श्लोक है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समस्य दृश्यते तस्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो ये परा अस्य शक्ति, ये कौन है, भगवान की शक्ति श्रीमती राधारानी है। तो ये श्रीमती राधारानी उनके जो शक्ति है भगवान की मूर्तिमान स्वरूप, शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। श्रीमती राधारानी क्या करती है, वो अपने आप को विस्तार करती है और एक शक्ति के रूप में जिसका नाम है स्वरूप शक्ति या चित शक्ति। ये चित शक्ति क्या करती है, चित शक्ति से दो और शक्तियों का प्राकट्य होता है। एक है माया शक्ति जो चित शक्ति का जो छाया माना जाता है, और ये जो चित शक्ति है या स्वरूप शक्ति है, कभी कभी चित शक्ति बोला जाता है कभी स्वरूप शक्ति बोला जाता है, इसका जो अंश रूप का विस्तार है जीव शक्ति, और सारे जितने भी जीव हम इस संसार में देखते हैं वो सारे जीव कौन है, ये जीव शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। भले ही भगवद गीता में कहा गया है मम एव अंशः, सारे जीवों को भगवान क्या कहते हैं, मम एव अंशः, मेरे अंश है, लेकिन भले ही उधर भगवान ने कहा मेरे अंश है, हमको ये समझना चाहिए कि हम भगवान के जो चित शक्ति है उच्चित शक्ति का अंश है, तो चित शक्ति का अंश का विस्तार है, अंश का प्राकट्य है। तो श्री भक्तिनाथ ठाकुर अपने जैव धर्म में इस बात को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के धाम में जो जीव है, जैसे यशोदामय है, नंद महाराज है, इन जीवों को जीव बोलना उचित नहीं है, इनको पार्षद बोलना चाहिए, क्योंकि वो नित्य सिद्ध है। क्यों? उनका कैटेगरी जो हम लोग कहते हैं ना जीव से तटस्था शक्ति है, यशोदा मई नंद महाराज और जितने भी भगवान के पार्षद हैं वो तटस्था शक्ति नहीं है, वो चित शक्ति का ही विस्तार है। तो चित शक्ति का विस्तार होने की वजह से वो जीवों का जो कैटेगरी है, उन भक्तों का जो कैटेगरी नंद महाराज, यशोदा और जितने भी ग्वाल बाल गायें बछड़े जो जिनकी पूर्ण आध्यात्मिक शरीर है, वो कभी भी माया में उनका माया का प्रभाव नहीं रहता, वो माया के जगत से बहुत दूर रहते हैं। केवल वही जीव जो जीव शक्ति के द्वारा प्रकट जो तट में रहता है उनके ऊपर ही माया का प्रभाव रहता है। इसलिए इन दोनों प्रकार की जीव में या दोनों प्रकार की जो लोगों में अंतर है, तो इस बात को बताने के लिए कि यशोदा नंद महाराज ये कभी भी बद्ध नहीं हुए, या बद्ध नहीं हुए तो बद्ध मुक्त कैसे हुए, नहीं हुआ, वो हमेशा कृष्ण के जहां जहां लीलाएं होती हैं वो कृष्ण की लीलाओं में भाग लेने के लिए वो जाते हैं। तो इधर द्रोण और दारा कौन है? तो अगर कहा जाए नंद महाराज यशोदा पिछले जन्म में द्रोण और दारा थे, अगर वो कहेंगे तो हमारा पूरा सिद्धांत में बिगड़ जाएगा, सिद्धांत में दोष हो जाएगा, क्योंकि यशोदा और नंद महाराज का पिछला जन्म था ही नहीं, क्योंकि पिछला जन्म अगला जन्म बद्ध जीवों का होता है, मुक्त जीवों का खास करके जो नित्य जीवों का कभी पिछला जन्म तो होता नहीं है। अभी परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था, यशोदा नंद महाराज ने पिछले जन्म में क्या किया, अभी उसका प्रश्न का जवाब देते हुए इधर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अभी मैं कहता हूं ये द्रोण और धारा थे ना, वो अलग है और यशोदा नंद महाराज दोनों अलग है। तो अलग है तो शास्त्र में तो कहा गया है द्रोण और धारा ही नंद यशोदा बने, प्रश्नि और सुतभा वसुदेव देव की बने, ऐसा हमको सुनने को मिलता है। उसका निराकरण तो आगे के श्लोकों में होगा, लेकिन फिर भी अभी प्रसंग ही चल रहा है इसलिए जानना जरूरी है। तो द्रोण और धारा ने कृष्ण की भक्ति किया, कैसे भक्ति किया, नंद यशोदा के पदचिन्ह में भक्ति किया, नंद यशोदा मय के पदचिन्ह में शुद्ध भक्ति करने के वजह से उनको क्या स्थान प्राप्त हुआ, नंद और यशोदा के शरीर में समावेश होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी दूसरे शब्दों में नंद महाराज और यशोदा ने जो कृष्ण के साथ आनंद को अनुभव किया, रस को आस्वादन किया, उस रस को आस्वादन करने का मौका द्रोण और दारा को नित्य सिद्ध जो नंद यशोदा के शरीर में समावेश होकर मिला। तो ये कहना गलत है कि नंद महाराज और यशोदा पिछले जन्म में द्रोण और दारा थे, लेकिन ये कुछ गुह्य सिद्धांत होता है उसको इतना व्यक्त रूप में शास्त्रों में उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि साधारण लोगों की बुद्धि का या बुद्धि के परे है इन सब बातों को समझने के लिए। इससे हमारे आचार्य उनके जो भक्तों की समावेश में इन सब चीजों की चर्चा करते हैं और इन सब चीजों की बातों का वर्णन करते हैं। इसलिए अगर शास्त्रों को पढ़ने जाएंगे तो ऐसे सीधा पढ़ने जाएंगे तो हमको उनका सही वास्तविक स्थिति को हम जान नहीं सकते, लेकिन श्रील भक्तिनाथ ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी और अन्य जितने भी परंपरा के आचार्य हैं उनके अनुसार उनकी व्याख्या को सुनेंगे, बड़ा आश्चर्य अद्भुत उसकी व्याख्या हमको सुनने को प्राप्त होती है। अभी भी आगे के श्लोकों में भी इसी बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा किया जाएगा, लेकिन बात यह है श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि दस द पद purpose of Parikshit Maharaj inquiry was to determine whether ordinary human beings can attain position of Mother Yashoda, Nand Maharaj. क्या कोई जीव साधारण व्यक्ति नंद महाराज और यशोदा जैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। केवल उनका अनुगत्य में हम उनके शरीर के अंदर समावेश होकर उसका आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए नित्य सिद्ध में और साधन सिद्ध में अंतर है। द्रोण और दारा कौन थे? वो साधन सिद्ध थे। इन द्रोण और दारा अन्य जितने भी जीव, जैसे हमारे हम भी जीव है, ये कहां के, किसके, किसकी कौन सी शक्ति से प्रकट हुए? जीव शक्ति से प्रकट हुए। लेकिन यशोदा नंद महाराज ये सब कौन सी शक्ति से? चित शक्ति से प्रकट हुए। अभी एक प्रकार की व्याख्या है। श्री प्रभुपाद जी आप देखिए, इधर कहते हैं कि नंद महाराज यशोदा कृष्ण के शरीर से प्रकट हुए, तो इसको भी थोड़ा सा विचार करके देखना चाहिए। श्री भक्तिनाथ ठाकुर अपने जैव धर्म में इसके विषय में और अच्छी तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो नित्य मुक्त जीव जो है, या नित्य मुक्त जीव दो प्रकार के हैं। एक है जो भगवान की माधुर्यमय लीला में भाग लेते हैं, एक है जो भगवान की जो ऐश्वर्यमय लीला में भाग लेते हैं। जो भगवान की माधुर्यमय लीला में भाग लेने वाले जो जीव हैं, वो बलराम के शरीर से प्रकट होते हैं। जो भगवान की ऐश्वर्यमय लीला में प्रकट होने वाले जो जीव हैं, लीला में भाग लेने वाले जीव है, वो शंकरषण से प्रकट होते हैं। तभी प्रश्न ये हुआ कि क्या ये जो नित्य मुक्त जीव है कि बलदेव से प्रकट हुए या चित शक्ति से प्रकट हुए? तो ये बड़ा विवादास्पद बात है गौड़ीय वैष्णवों के बीच में भी, लेकिन ये कोई विवादास्पद नहीं है, लगता है, लगने पर भी विवादास्पद नहीं है। तो एक जगह से देखा जाए, एक दृष्टिकोण से देखा जाए, ये जो चित शक्ति से ही सारे जीवों का प्राकट्य होता है, और एक तरीके से देखा जाए बलदेव या मूल संकर्षण से जीवों का प्रकट होता है। तो ये वेद क्यों है, अलग अलग जगह ऐसा क्यों वर्णन किया गया है? क्योंकि रसों के तारतम्य से देखा जाए, रस के दृष्टिकोण से देखा जाए, कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाला एक ही चीज है, उनकी शक्तियां। लेकिन तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, शास्त्रों में कहा गया है कि ममैव अंशः, सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है। इसलिए इस बात को बताना जरूरी है कि सारे जीव भगवान से प्रकट हुआ है। इस बात को वर्णन करने के लिए शास्त्रों में इस बात को भी कहा गया है कि जीव जो है कृष्ण के शरीर से, या बलदेव के शरीर से, या महासंकर्षण के शरीर से उत्पन्न हुआ है। लेकिन फिर भी श्रील भक्तिनाथ ठाकुर अपने जैव धर्म में कहते हैं बलदेव का भी प्राकृति कहां से होता है? भगवान की चित शक्ति के द्वारा होता है। अस्तित्व में बलदेव भी भले ही ऐसा लगता है कि कृष्ण के विस्तार है, फिर भी जब तक राधा रानी का या उनकी जो पराशक्ति है, कृष्ण की पराशक्ति है, उनका इरादा नहीं होता है, तब तक बलदेव का ही प्राकट्य नहीं होता है। तो इस तरीके से श्री भक्तिनाथ ठाकुर के जैव धर्म में ये जो गुह्य बात जो श्री प्रभुपाद जी ने सरल तरीके से इस प्रकार बताया, ऊपर ऊपर ही एक एक सूक्ष्म रूप में इस बात को बता दिया है। उसका विस्तार से श्री भक्तिनाथ ठाकुर जो अनेकों सालों से जब से व्यास के बाद व्यास वेदों की रचना करके गए, उसके बाद अनेकों लोगों के मन में अनेक अलग अलग प्रकार की धारणाएं, जीव क्या है, जीव कौन है, कहाँ के कौन क्या है, उन सब प्रकार की जितने भी कंफ्यूजन है, उन सब का निराकरण शेख गोस्वामी आने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन था, लेकिन सारे कन्फ्यूजन को श्री भक्तिनाथ ठाकुर ये अपने जैव धर्म नामक ग्रंथ में ये सब निराकरण करते हैं। तो ये जो प्रसंग इस श्लोक में लिखा हुआ है, ये जो तात्पर्य लिखा हुआ है, लगता है बहुत सरल है, लेकिन उसके अंदर बहुत गुह्य बातें हैं। रस के दृष्टिकोण से देखा जाए या तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये साधारण चीज नहीं है। जब तक हमको आचार्यों की कृपा नहीं रहेगी, तब तक हम इन बातों को नहीं समझ सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा कैसे है कि द्रोण और दारा वो दो है, वो नंद महाराज और यशोदा के शरीर में प्रवेश किए? ऐसा कैसे वृष्णि और प्रतस्तपा देवकी और वसुदेव के शरीर में प्रवेश करके आनंद को अनुभव किए? तो हम कभी कभी लोग पूछते हैं, प्रभु जी हमने देखा है कि भीम और हनुमान तो वायु के पुत्र है, तो अवतार है, उनका भी दोनों का भी भेंट हुआ, वो कैसे है? हाँ, हमको ये समझ में नहीं आता है। कभी कभी बोलते हैं कि परशुराम है, राम है, उन दोनों का भेंट हुआ, वो तो विष्णु का ही अवतार है। तो अनेकों अनेकों इस प्रकार के प्रश्न हैं, उसका निराकरण तभी होगा जब हम आचार्य जिस प्रकार कहा है उन सब चीज को जानने के प्रयास करेंगे। प्रहलाद के विषय में भी कहा गया है, प्रहलाद जो है वो ब्रह्मा जी के लोक में शंख को कर्ण करके एक भक्त थे, और उनका शाप मिला तो वो प्रहलाद बने। तो प्रहलाद तो नित्य सिद्ध पार्षद है, तो उनको शाप कैसे मिला? तो अनेकों अनेकों इस प्रकार के जो प्रश्न हैं शास्त्रों में, इसका निराकरण तभी होगा जब हम इन सब बातों को ये आचार्यों की जो एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो सार रूप में ये है आज के श्लोक में जो चार महत्वपूर्ण बातें हमने चर्चा किया। सबसे पहला, परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित हो गए यशोदा मई की भक्ति को देख के। इस आश्चर्य में उन्होंने प्रश्न पूछा कि कौन सा पुण्य कार्य किया यशोदा ने। ये प्रश्न सुन के, परीक्षित महाराज के प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी को एक तरीके से ओए खिन्न हो गए, क्या है, क्या प्रश्न है ये? क्यों? क्योंकि क्या यशोदा नंदमा का पिता जन्म था क्या? चलो ठीक है, आपका प्रश्न का भी जवाब देता हूँ और साथ साथ मैं भी सिद्ध करता हूँ कि यशोदा नंद महाराज साधारण लोग नहीं है, वो अलग कैटेगरी के जीव है। और ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि जीवों का जो भेद, ऐसा नहीं कि सारे जीव एक ही कैटेगरी में है। कुछ नित्य मुक्त होते हैं जो चित्त शक्ति से उनका प्राकृति होता है, जो नित्य बद्ध मुक्त जीव है, जो साधना सिद्ध जीव है, वो अलग कैटेगरी के होते हैं। और अंततः हमने ये हाँ शब्द के द्वारा शिला वल्लभाचार्य की टीका से हमने ये बात सुना कि ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे मैं आपको प्रजापति का पोस्ट दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो इधर, भक्ति मांग रहे हो? ये ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। यानी द्रोण और दारा की भक्ति इतना महान थी कि ब्रह्मा जी भी ये हाँ शब्द के द्वारा आश्चर्यचकित हो गए। तो ये बातें हम इस श्लोक से कुछ सुनने को मिल रहा है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? प्रश्न है चित्त शक्ति का, कि भगवान की अपनी शक्ति, परा अस्य शक्ति विविधैव श्रूयते। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, आपके घर में कुछ वस्तुएं हैं, वो भी आपका है, आपका पुत्र भी आपका है, दोनों आपका है, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? जब ये आप बोलोगे मेरा पुत्र है, तो मेरा वो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर है। तो वैसे ही हर चीज भगवान का ही है। ऐसा कौन सा चीज है जो भगवान का नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का अपना कुछ है? क्या है वो? वो चित्त शक्ति है, जिसके अंदर श्रीमती राधारानी ने अपना सारा चीज को आविष्कृत किया है। तो इसलिए कहा गया है कि कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होता है, ज्ञान बल क्रियाचा। ज्ञान, ज्ञान जो है, ज्ञान शक्ति को चित्त शक्ति कहा गया है। बल क्रिया, क्रिया हलादिनी शक्ति है, और बल जो है जिसके द्वारा सारा आधार रहता है वो है संधिनी शक्ति है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की जगह अलग अलग शास्त्रों में इनको अलग अलग शब्द से इस्तेमाल किया गया है। अगर देखा जाए ये जो ज्ञान शक्ति जो है, ज्ञान बल क्रिया, जो उपनिषदों में प्रास्य शक्ति विधेय शुभे स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, उसी चीज का जो गौड़िया भाषा में या रस शास्त्र में, ये तत्व शास्त्र में ज्ञान बल क्रिया कहा गया है। ये जो ज्ञान जो है वो चित्त शक्ति है। और कोई है? हाँ, उनका प्रश्न ये है कि दुनिया में कंपटीशन करके एक चीज होता है, तो तो जब भक्तों की समझ में आते हैं तो ये कॉम्पिटिशन की भावना को लेके आते हैं, उसको हम कैसे समझें? आध्यात्मिक जगत जो है वो टोटली पूर्ण तरीके से भौतिक जगत से भिन्न है, टोटली अलग है। तो ये जो स्पर्धा की भावना जब भौतिक जगत में रहती है, ये स्पर्धा किसके लिए है? कंपटीशन मतलब स्पर्धा, तो स्पर्धा मतलब मैं आगे आना चाहता हूं, मैं आगे आना चाहता हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मेरे समान कोई नहीं है, तो इसको स्पर्धा कहा जाता है। तो अगर आप आध्यात्मिक जगत में आप भक्तों के समाज के बीच में, तो स्पर्धा क्या होना चाहिए? स्पर्धा ये होना चाहिए मुझे और अच्छा भक्त बनना है। भौतिक जगत में क्या स्पर्धा होती है? हाँ, मुझे और अच्छा, मैं ज्यादा भोगता हूं, ज्यादा भोग की सामग्री इकट्ठा करना है, मुझे और भोगना है, ये स्पर्धा रहती है। और क्या स्पर्धा? ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा यश प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वही स्पर्धा की भावना हम आध्यात्मिक जगत में ला सकते हैं। तो हमको स्पर्धा होना चाहिए, मुझे और अच्छा भक्त बनना है, मुझे उससे अच्छा भक्त बनना है, मुझे ऐसा अच्छा भक्त बनना है। तो तब एक समस्या आती है, तो अच्छा भक्त बनने का अर्थ क्या है? जब हम अच्छा भक्त बनने का अर्थ नहीं जानते हैं, तब क्या होता है? ये स्पर्धा जो है भौतिक हो जाता है। लोगों के मन में ऐसा रहता है, स्पर्धा मतलब अच्छा भक्त बनना मतलब क्या है? अच्छा भक्त बनना वो कर रहा है ना, उससे मुझे अच्छा करना है, उसने 100 किताब बांटना है तो मुझे 200 किताब बांटूंगा और बताऊंगा देखो उससे अच्छा मैं हूं। तो अच्छा भक्त बनने का अर्थ ये बहिरंगी चीजों से मापा नहीं जाता है। अच्छा भक्त बनने का अर्थ है कि हमारे अंदर दैवी गुणों का विकास करना, डिवाइन मैनिफेस्टिंग डिवाइन क्वालिटीज, उनमें से नम्रता है और सहिष्णुता, ये दो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जितने भी दिव्य गुण है उन सारे गुण में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नम्रता है और सहिष्णुता है। तो स्पर्धा क्या होना चाहिए? मैं ज्यादा नम्र हूं, मैं ज्यादा सहिष्णु बनू। तो इस हिसाब से स्पर्धा ये गोलोक वृंदावन में भी चलती है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि कोई भक्त को कहता है कि किसी को कोई चीज अगर देना है, आरती समझ लीजिए या प्रसाद देने की बात आती है, तो स्पर्धा रहती है किसको मैं आगे करूं। अगर कोई सोचे कि मैं उससे ज्यादा तेज जाके, मैं जल्दी जाके, उससे पहले जाके मैं ये स्वीकार करूं, इसके भौतिक तरीके से, इसलिए स्पर्धा को हम त्याग नहीं करते, उल्टा हम स्पर्धा को सही दृष्टिकोण से अच्छा भक्त करने बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो लेकिन दोष किसमें है? जब अच्छा भक्त का निर्णय या अच्छा भक्त कौन है उसका मापदंड क्या है, उसमें हम गलती कर लेते हैं। अच्छा भक्त मापदंड यह नहीं कि ये अच्छा बोल सकता है तो अच्छा भक्त है, ये अच्छा जानकारी है तो ये अच्छा भक्त है, नहीं। भक्त का मापदंड जो है उनके दिव्य गुणों से ही होता है, ओनली बाय मेजरमेंट ऑफ हिज क्वालिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई व्यक्ति गूंगा है, हो सकता है कि व्यक्ति बड़ा प्रवक्ता है, इसका अर्थ यह नहीं कि गूंगा जो व्यक्ति है भक्त है वो अच्छा भक्त नहीं है, क्योंकि उसके अगर उसके हिसाब से मापने जाएंगे फिर तो गूंगा है तो भक्ति नहीं है, इसको जीरो है, बोल ही नहीं सकता है। तो भक्ति का मापदंड उनके गुणों से होता है। तो गुण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सहनशीलता और नम्रता, यही मापदंड है। उसके अलावा जितने मापदंड है भौतिक है, और भौतिक मापदंड के द्वारा आध्यात्मिकता को हम नहीं कर सकते, कि वी कैन नॉट मेजर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बाय मेनी मटेरियल मेजरमेंट। सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद कॉम्पिटिशन, द प्रॉब्लम इज व्हाट? द मेजरमेंट ऑफ वंस प्रोग्रेस, द मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन डिवाइन क्वालिटीज, अचीवमेंट ऑफ डिवाइन क्वालिटीज, वेल एंड गुड। जब अपने आप को ही मापते हैं और दूसरों को भी भक्ति का मापते हैं, कैसे मापना चाहिए? कितना अच्छा भक्त है, कितना नम्र है, कितना सहनशील है, इसी प्रकार हमको देखना चाहिए। ठीक है, और हाँ। मुक्त सिद्ध करके कोई होता नहीं है। नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध मतलब हमेशा वो नित्य सिद्ध रहते हैं, वो कभी वो बद्ध नहीं होते, उनको नित्य सिद्ध कहा जाता है। यशोदमय, यशोदमय कभी भी माया में नहीं आ सकती है, नित्य सिद्ध। और कुछ है बद्ध मुक्त, बद्ध मुक्त या साधन सिद्ध, दोनों एक ही है। बद्ध मुक्त पहले बद्ध थे और वो अभी मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हो गए? साधना करके मुक्त हो गए, इसलिए वो क्या कहा गया है? साधना सिद्ध कहा गया है। ठीक है, तो कभी शब्दों का, क्योंकि आप शास्त्रों में भी ये शब्द अलग अलग तरीके से, एक ही बात को दो शब्दों में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, इट इज देयर लाइक दैट, तो इसलिए दोनों शब्दों को इस्तेमाल करना हुआ। तो इतना ही है, यू गेटिंग द पॉइंट? बेसिकली ये है, एक है नित्य सिद्ध यशोदा हो इच्छित शक्ति के जिनका प्राकृतिक होता है, और मुक्त जीवों में और एक कैटेगरी है जो साधना सिद्ध या बद्ध मुक्त है, वो मुक्त हो चुके हैं, भगवान की धाम में है, वो सब उनके अनुगत्य में है, और ये कभी भी माया में आ सकते हैं, क्योंकि इनका इनका प्राकृतिक किससे हुआ है, कहां से हुआ है? जीव शक्ति से हुआ है। जीव शक्ति जो है बहुत कमजोर रहता है, लेकिन चित्त शक्ति से जो जीवों का प्रकट हुआ है यशोदा में, उनके अंदर पूर्ण तरीके से हलाद्री संदिनी संवित पूर्ण तरीके से आवेशित हुआ रहता है। ये जीव शक्ति से प्रकट हुआ जो जीव होते हैं उनके अंदर हलाद्री रहता है, लेकिन वो कैसे है? ब्रह्म सुख का हलाद्री रहता है, और संदिनी रहता है। कैसे रहता है संदिनी? मैं हूं उतना ही रहता है। इसलिए हम इस जगत में देखते हैं सारा सभी लोग सारा जगत कैसे मापते हैं? अपने हिसाब से मापते हैं। वो सोचते हैं कि पूरा जगत मेरे लिए और किसी के लिए नहीं है, है कि नहीं? क्योंकि उनके अंदर वो संधिनी शक्ति है, संवित जो है वो तत्व है जिसके द्वारा वो बना हुआ है। थोड़ा सा एक गहरा गूढ़ ज्ञान है, उसको ऐसा प्रवचन में समझा नहीं सकते, थोड़ा सा चार्ट वार्ट बोर्ड की जरूरत पड़ता है, लेकिन ये सार रूप में ये है कि जीव शक्ति से प्रकट हुए जीव हम सब बहुत कमजोर है, अकेले से हम माया का सामना नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया है, भविताय भगवान क्या कहते हैं? मामे वये प्रपद्यन्ते मायामेताम चरन्ते। ऐसे भगवान की शरण में जाएंगे तो माया हमको कुछ नहीं कर सकती, लेकिन नित्य सिद्ध जो जीव है यशोदामय नंद महाराज, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, माया तो उनके पास भी नहीं आ सकती है, क्योंकि सारे वो सब है वो सब चित्त शक्ति से प्रकट हुए, ये डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। हाँ हाँ अलग कैटेगरी है। बात यह है कि आध्यात्मिक जगत में हम सब ये जो बात चल रही है, ये बातें जो है वो आध्यात्मिक जगत ही काल चल रही है। आध्यात्मिक जगत में कोई असुर नहीं है, भौतिक जगत में असुर है, वो सब बद्ध जीव है, वो कोई भगवान की चित्त शक्ति से प्रकट जीव है जो माया तो माया के द्वारा आवृत है, वो है। वो माया के जगत में ये जो है नित्य बद्ध, हाँ ये प्रश्न का बात ये है नित्य बद्ध, क्योंकि आपने प्रश्न उठाया तो सब्जेक्ट हो रही इसके इसके बारे में कहा, क्योंकि आपने प्रश्न उठाया तो इसके बारे में कहता है नित्य बद्ध है। कुछ जीव ऐसे नित्य बद्ध है, इसका अर्थ क्या है? नित्य शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि टाइम इमेमोरियल हमको मालूम नहीं है कब से बद्ध है, इसलिए इसको नित्य कहा गया, एक कारण। दूसरा कारण है श्री भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं, ये जो बद्ध अवस्था जो है काल के पहले हुआ, काल का शुरुआत से पहले हुआ है, काल का शुरुआत से पहले होने के नाते हमारे पास और कोई शब्द नहीं है उसका वर्णन करने के लिए, इसलिए नित्य शब्द इस्तेमाल किया गया है। इज द टू रीजंस व्हाई दे आर कॉल्ड नित्य बद्ध। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बद्ध ही रहेंगे, बस जाने वाले नहीं है तो क्या फायदा है सब करने के लिए। नहीं तो ये गलत समझ है, ठीक है।
हाँ
नारद मुनि के विषय में भी वो जो बालक था पिछले जन्म में वो नारद जी बने, तो नारद जी कौन है? वो नारद जी के शरीर में प्रवेश किए, यही तो बात कर रहा था द्रोण और दारा। नंद महाराज यशोदामय कौन है? भगवान के पार्षद है, पार्षद है। जब भगवान इस दराधाम में आते हैं यशोदा नंद महाराज को भी लेके आते हैं, तब जो जीव नंद महाराज यशोदा के अनुगत्य में भक्ति किया है उन जीवों को उसको उसका सुख देना पड़ेगा। तो वो दो नंद महाराज यशोदामय के शरीर में समा जाते हैं, वैसे नारद भी है, ठीक है। ये बात है, अगर जाना चाहे तो क्या करें। जैसे कोई मंदिर में ब्रह्मचारी बना, आनंद से नाच रहा है, कूद रहा है, भजन कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, सब कुछ आधार, वो सोचा कि मैं थोड़ा जाना चाहता हूं, तो कोई मना कर सकता है? जबरदस्ती तो भगवान नहीं करते, हम भी नहीं कर सकते। भगवान स्वयं जबरदस्ती नहीं करते, तो हम भी नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो जिसको जहां जाना है उसकी स्वेच्छता है, हम खाली उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। उसको बांध के कितना दिन रखेंगे बोलो? आप एक व्यक्ति को बांध के रखो आश्रम में, कितना दिन रखोगे? तो कैसे करके भागेंगे? हमारे गिरधर वो करते ही है, कितना बांध के रखे उनको। कल किसी ने बोला रोज इसको बांध के रखो, मतलब ना वो कृष्ण है ना यशोदा, एक ही चीज बांध सकता है वो प्रेम। हम तो खाली दे सकते हैं लेकिन कंपल्सरी तो नहीं कर सकते, है कि नहीं? जनरली यद गत्वा, एक बार जेल से छूटने गया तो वापस नहीं आता है, आना चाहे तो खुला है, बहुत ही जगत खुला जेल है, जो जिसको चाहे बाहर जा सकता है, जिसको चाहे अंदर आ सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही जगत ऐसा जेल है ना, जो चाहे उधर से जा सकता है, जो चाहे इसके अंदर आ सकता है। समस्या क्या है? आप बोले कि कब जाऊंगा, कब जाऊंगा, अरे कब छोड़ रहे हो गए, कब जाओगे पूछो, बोलो। बात यह नहीं कि कब जाऊंगा, बात यह है कि कब जाना चाहते हो। अभी जाना चाहते हो अभी जा सकते हो, डर लगता है ना, नहीं अभी कैसे जाऊंगा, तो और बहुत सारा काम बाकी है। समस्या यह है, द प्रॉब्लम इज नॉट विथ कृष्णा, द प्रॉब्लम इज विथ मी, प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज वी आर अटैच्ड। हमारी समस्या क्या है? हमारा आसक्ति है, ये है। ये बहुत ही जगत खुला जेल है, जिसको जाना है आओ, जिसको जाना है जाओ। तो सांज मुक्ति, अभी श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बद्ध जीवों के, नित्य बद्ध जीवों के विषय में कहते हैं, तीन प्रकार के नित्य बद्ध जीव है, जिसकी लक्ष्य अलग रहता है, तीन रहता। जो माधुर्यमय भक्ति साथ, जो माधुर्यगत है, यानी उनकी साधना में वो भगवान राधा कृष्ण का सेवा करते करते वो कहाँ जाएंगे? भगवान की धाम में जाएंगे, भगवान की माधुरी लीला में जाएंगे। कुछ जो है ऐश्वर्यगत है, जो भगवान की ऐश्वर्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट होकर वैकुंठ जाएंगे। कुछ जो है ब्रह्मगत है, जिसकी आकर्षण ब्रह्म के प्रति है, वो ब्रह्म में लीन होकर शांति से रहेंगे, उनको साउच मुक्ति कहा जाता है। तो ये जो नित्य बद्ध जीवों में जो साधना करते हैं, तीन प्रकार के हैं। एक है निराकार ब्रह्म का उपासना करके ब्रह्म को प्राप्ति, दूसरा है ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा ऐश्वर्य आकर्षित नाग वैकुंठ की प्राप्ति। हाँ दे एंटर इनटू द इम्पर्सनल एफल्जेंस, चुकी हो, जो भगवान की दो प्रकार की साउज है, ब्रह्म साउज है, शरीर साउज है। ये ब्रह्म साउज में कुछ कुछ जीव चले जाते हैं, ब्रह्म में लीन रहते हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं उधर बैठ के। और कुछ है जो भगवान की शरीर में प्रवेश करते हैं और उधर रह जाते हैं। लेकिन कुछ असुर जैसे शिशुपाल, अंतरक्ष, जब इनका मृत्यु हुआ, भगवान ने उनको मारा, तो उनका शरीर कहां गया? आत्मा कहां गया? भगवान के शरीर में। लोगों को दिखाई पड़ा भगवान, उन्होंने शरीर चार्ज प्राप्त किए, लेकिन कुछ समय के लिए भगवान के शरीर में रहे और वो जय विजय बन गया, जय विजय बन गया। इसलिए हर एक जो साउज एक ही प्रकार का नहीं होता है, तो लीला के हिसाब से अलग अलग चीज को अलग अलग तरीके से लेना है। अगर कोई कहे शिशुपाल दंतवक्र को साउज मुक्ति मिला, वो भगवान ने दिखाया ऐसा, लेकिन भगवान को शिशुपाल दंतवक्र को वापस अपने धाम में लेना था। तो कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनकी भौतिक दृष्टि है, उनको ठगने के लिए भगवान ने क्या किया, दिखाया शिशुपाल दंतवक्र को साउज मुक्ति मिला, लेकिन अपने पार्षदों को अपने पास लेके आने के लिए एक तरीका है। जैसे कुछ लोगों को भौतिकवादियों के लिए भगवान ने क्या दिखाया, मुझे बाण लगा और मैं शरीर छोड़ दिया। भगवान रामचंद्र वो सरयू में डूब गए, कुछ लोग ये भी बात करते हैं, बड़े बड़े लीला किया, आखिरी में क्या हुआ, डूब के मर गए, मत ऐसा बात करते। लेकिन अपने धाम में जाने का ये रास्ता है उनका, साकेत इसे पास से मतलब। तो प्रत्येक लीला को अपने अपने हिसाब से समझने के प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बहुत समय हो गया, स्टॉप किया। हरे कृष्ण संक्राश्रीमद भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।
चार कुमार के टाइम पे क्या माता जी लोग थे जब सृष्टि करने के लिए बोला?